से हो अगर बदन पे पहरे तो कोई गम नहीं, रूह भी महसूस कर दे
ये अशार आफताब बहादुर के हैं, जो उसने मौत की कोठरी में अपने आखिरी अयाम में लिखे थे। मैं हूँ शाहपारा सलीम और आपको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम कैद कहानी में। आफताब को जब कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया तो वो 15 साल का था और प्लम्बर का काम सीखने के साथ साथ स्कूल भी जाता था। आफताब ने 22 साल मौत की कोठरी में गुजारे। उस दौरान उसने मुसव्वरी भी सीखी और शायरी भी की। आफताब को जून 2015 में तख्ते दार पर लटका दिया गया। बदन पर पहरों से तो आजाद हो गया, खुदा जाने उसकी महसूर रूह आजाद हुई या नहीं।
रूह भी महसूर कर देती है बेबसी।
आफताब बहादुर तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, मगर उसकी बनाई हुई तस्वीर और उसकी लिखी हुई शायरी जिंदा है। वो उन तमाम कैदियों की आवाज बन गया है जिनका बदन भी कैद होता है और रूह भी, खसूसन वो कैदी जिनकी रिहाई का कोई दिन मुअय्यन नहीं होता। सजाए मौत पाने वाले वो कैदी जो साला साल अपने मुकदमे और उसकी अपीलों के फैसले के इंतजार में जिंदगी और मौत, उम्र कैद और फांसी के फंदे के दरमियान झूलते रहते हैं। मोहम्मद शफीक ऐसा ही एक कैदी था। मोहम्मद शफीक का ताल्लुक खूबसूरत वादी नीलम आजाद कश्मीर से था, जो अपने सरसब्ज पहाड़ों और तेज रौ दरियाए नीलम के लिए मशहूर है। शफीक 7 बहन भाइयों में सबसे छोटा था, सबका लाडला। उसकी माँ उसे प्यार से बबला कहती थी। शफीक की मंगनी बचपन में ही कर दी गई थी। रसम धूमधाम से अदा की गई और इसकी बहनों ने तो बहुत खुशी मनाई, मगर फिर अचानक हालात बदल गए। शफीक के बाप पर फालिज का हमला हुआ और वो काम काज के काबिल ना रहा। मजबूरन शफीक को अपने भाइयों का हाथ बचाने के लिए तालीम का सिलसिला रोकना पड़ा। फिर हालात उसे कराची ले गए। उसे एक रिहायशी बिल्डिंग में गार्ड की नौकरी मिल गई। वो खुश था कि उसे काम मिल गया। वो मालिक मकान के हर हुक्म की तकमील करता था।
शफीक तरखान को भेजा था, काम कर लिया उसने?
जी सर कर लिया, मैंने चेक भी कर लिया।
शाबाश, और पेंट वाले ने फिर डंडी तो नहीं मारी?
ना ना सर जी, दोनों फ्लैटों में कर दिया पेंट, किराएदार बहुत खुश है।
तू अच्छा काम कर तो तुझे एक बिल्डिंग का हेड गार्ड लगा दूंगा और तनख्वाह भी डबल।
बिल्डिंग का गार्ड, तनख्वाह भी डबल, बड़ी मेहरबानी सर जी।
शफीक की खुशी का ठिकाना नहीं था। तरक्की और डबल तनख्वाह, वो और जोश से अपना काम करने लगा। किराएदार भी उस पर भरोसा करते थे, बल्कि अपने बच्चों की देखभाल के लिए भी उसे ही कहते थे। इन्हीं दिनों किराएदारों की सोसाइटी ने मालिक मकान से किराया ना बढ़ाने और दूसरे मुतालबात के लिए कानूनी चाराजोई शुरू कर दी। उन्होंने किराया अदा करने से इनकार कर दिया और मालिक मकान ने उन्हें बेदखल करने की कोशिश शुरू कर दी। बात बिगड़ती चली गई। मालिक अपने किराएदारों से किराया वसूल करने के लिए दबाव डालता और किराएदार उसे संगदिल मालिक का नौकर होने के ताने देते।
अबे शफीक, तुम बहुत नरम हो गए हो इनके साथ। इन बदबख्तों को मैं बिल्डिंग से निकालना चाहता हूँ और तुम इनसे दोस्तियाँ करते हो, इनके बच्चों को खिलाते हो। तुम्हें तनख्वाह कौन देता है, वो या मैं?
शफीक बेटा, तुम खुद ही बताओ, हम इन छोटे छोटे बच्चों के साथ कहाँ जाएं? फ्लैट भी तो इतनी आसानी से नहीं मिलता ना आजकल। तुम्हारा मालिक मकान बहुत जालिम शख्स है।
अरे शफीक, खबरदार जो इनको मुंह लगाया तो। इनका कोई काम किया वरना फिर तनख्वाह भी इन्हीं से लेना।
उसे कह दो हम किराया नहीं देंगे, हमारे पास स्टे ऑर्डर है।
सर जी मेहरबानी करें किराया दे दें वरना मालिक मेरी तनख्वाह काट लेगा।
शफीक
बहुत परेशान था। ना वो मालिक मकान को नाराज करना चाहता था और ना किराएदारों से बिगाड़ना चाहता था। उसे बिल्डिंग के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना भी अच्छा लगता था। फिर अचानक एक संगीन हादसा हो गया। ये अप्रैल 2004 की 10 तारीख थी, शाम का वक्त था। फ्लैट नंबर 10 के किराएदार कुरैशी साहब का 8 साल बेटा वकार बच्चों के साथ आंख मचोली खेल रहा था।
उधर नहीं इधर।
नहीं नहीं उधर।
विकी कहाँ जा रहे हो? विकी।
अरे ये विकी तो पार्क से बाहर चला गया।
विकी खेल खेल में पार्क से बाहर उस तरफ चला गया जिधर उजाड़ इलाका था। कुछ देर तो बच्चे छुपे रहे, फिर जब विकी ना आया तो वो उसे ढूंढने लगे। मगर विकी का कुछ पता ना था। वो उसके घर पहुँचे।
क्या बात है बच्चों? अरे भाई विकी कहाँ है?
विकी घर नहीं आया खाला।
नहीं तो तुम्हारे साथ ही तो खेल रहा था।
मगर खेलते खेलते पता नहीं कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा।
हाय मेरा बच्चा विकी कहाँ चला गया? अरे किसी ने हवा तो नहीं कर लिया?
विकी की माँ का शक सही था, उसे किसी ने अगवा कर लिया था।
खबरदार, जो पुलिस को खबर की।
बच्चा,
मैं पुलिस को इत्तला करता हूँ। इन हरामजादों की खबर मिल जाए तो इनके टुकड़े टुकड़े कर दूँ।
नहीं नहीं नहीं, तुम पुलिस को फोन मत करो, वो उसे मार डालेंगे। तुम रकम का बंदोबस्त करो जल्दी से।
कहाँ से बंदोबस्त करूँ इतनी बड़ी रकम का? और अगर बंदोबस्त हो भी जाए तो क्या जमानत है कि वो उसे छोड़ देंगे?
विकी के बाप ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस वालों ने बिल्डिंग में डेरे डाल दिए, चाय पानी खाना पीना और मशकूक अफराद से पूछगछ शुरू कर दी। इलाके में इश्तेआल फैला तो एमएनए साहब भी मुतवज्जा हुए।
थानेदार साहब, एक महीना गुजर गया है और उस बच्चे का पता नहीं चला। अवाम में बहुत इश्तेआल है।
सर पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम तो रकम लेकर भी गए थे मगर कोई मुकर्रा जगह पर आया ही नहीं।
ये मेरे हलके के लोग हैं थानेदार साहब, कुछ नतीजा निकालना पड़ेगा। ये लड़का कौन है?
ये शफीक है सर, चौकीदार है बिल्डिंग का, हमारी मदद कर रहा है बच्चे की तलाश में।
मुझे तो शक है कि इस वारदात में ये मुलव्वज़ है। आमतौर पर ऐसे लोग मुजरिमों के साथी होते हैं।
सर अगर ये मुलव्वज़ होता तो एक महीना पहले भाग सकता था।
यही तो इन लोगों की चलाकियां होती हैं थानेदार साहब।
सर जी बच्चा मिल गया।
क्या मिल गया?
मेरा मतलब है जी उसकी लाश मिल गई उजाड़ वाले नाले से।
इलाके में कोहराम मच गया। आला अफसरान ने मुकामी पुलिस को हदायत की कि बिला ताखीर मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए। चुनाचे मुकामी पुलिस ने मोहम्मद शफीक और एक दूसरे चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया। 9 रोज तक शफीक को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया।
बॉल कहाँ छुपाया तूने बच्चे को? कौन था तेरा साथी और कौन सी वारदातें की है तूने? बॉल इकरार करता है अपने जुर्म का।
कसूर था थानेदार साहब, मैंने कुछ नहीं किया।
बकवास करता है, हमारे पास सब सबूत मौजूद है। बॉल इतराफ करता है या और खातिर की जाए तेरी? बॉल अगवा तूने किया था
जी,
कत्ल भी तूने किया था।
शफीक ने एतराफ़ जुर्म कर लिया और इलाका पुलिस ने आला अफसरान को इतला कर दी।
अब सर इस बच्चे का केस हल हो गया है और मुजरिम भी पकड़ा गया है सर, और इसने इतराफे जुर्म भी कर लिया है।
शाबाश, तो मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाता हूँ, एमएनए साहब को भी बुलवाता हूँ।
हैरानकुन तौर पर 15 साला शफीक का केस इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में भेज दिया गया। जिस वकील को सरकारी तौर पर शफीक के दिफा के लिए मामूर किया गया था, उसने ना उसकी कम उम्री का सवाल उठाया और ना ही इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में केस चलाए जाने पर एतराज किया।
मोहम्मद शफीक, रकम का बंदोबस्त हुआ?
मैं बहुत गरीब हूँ जी, मेरे घर वालों को तो अभी तक पता भी नहीं कि मैं किस मुसीबत में फंसा हुआ हूँ।
मुसीबत में तो तू अब फंसेगा
जी।
तेरा मुकदमे वार हेड चौकीदार तो दे दिला के FIR के खानाबंद से निकल गया है, अब तेरा बचना मुश्किल है।
हेड गार्ड तो रिश्वत देकर रिहा हो गया, मगर शफीक के पास तो देने को कुछ था ही नहीं। सितंबर 2004 इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने शफीक को मौत की सजा सुना दी और 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने भी। 2000 किलोमीटर दूर रहने वाले शफीक के रिश्तेदारों को जब तक शफीक की सजा की खबर मिली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 7 साल तक शफीक फांसी के फंदे पर चढ़ने के अजियतनाक इंतजार में रहा। इस दौरान हुकूमत ने सजाए मौत को मौतल रखा, फिर अचानक दहशतगर्दी के हौलनाक वाकयात के रद्द अमल में अवामी जज्बात के पेश नजर नई हुकूमत ने सजाए मौत बहाल कर दी और फिर शुरू हुई धड़ाधड़ फांसियां। इस मौके पर इंसानी हकूक की तंजीमें और कानूनदान उसकी सजाए मौत की माफी का मुतालबा कर रहे थे कि बैन अलाक़वामी और पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक नाबालिग फर्द को सजाए मौत नहीं दी जा सकती।
ऑर्डर ऑर्डर।
मगर ये दस्तावेज?
ये दस्तावेज तो वकील दिफा को ट्रायल कोर्ट में लगाना चाहिए थी। अब इस स्टेज पर अदालत इस दरख्वास्त को एंटरटेन नहीं कर सकती, दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है।
सिंध कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने इस केस के बारे में एक रिपोर्ट मुरतब की।
हम सिंध हुकूमत से अपील करते हैं कि वो मोहम्मद शफीक की सजाए मौत रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रब्ता करे और दरख्वास्त करे कि उसकी उम्र के बारे में ट्रायल कोर्ट के सामने वकील दिफा ने जो मालूमात नहीं पेश की थी उनका मुआयना किया जाए। याद रहे, जो जान ले ली जाए उसे फिर वापस नहीं लाया जा सकता।
इसके साथ साथ सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने भी अपील की कि शफीक की सजाए मौत पर अमल दरामद रोक कर इसकी उम्र के बारे में इबहाम को दूर किया जाए। शफीक को मौत की कोठरी में 11 साल यानी उम्र का आधा हिस्सा गुजारने के बाद अगस्त 2015 में फांसी दे दी गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? सिविल सोसाइटी और इंसानी हकूक की तंजीमों की कोशिश के बावजूद उसे क्यों ना बचाया जा सका, इस बारे में हमारे माहरीन कहते हैं।
सर, शफीक ने तो इतराफे जुर्म कर लिया था, फिर उसकी सजा गैर मुनसिफाना कैसे हो गई?
देखिए, हमारा पुलिस और अदालती निजाम खामियों से पुर है। ये कन्फेशन बदतरीन तशद्दुद के जरिए हासिल किया गया था। उसे बिजली के झटके दिए गए, उसके नाखून निकाले गए, उसके जिस्म के नाजुक हिस्सों को सिगरेट से दागा गया। एक कम उम्र नौजवान से ऐसे बहिमाना तशद्दुद के बाद किसी भी जुर्म का इतराफ करवाया जा सकता है।
सर, अगर वो वाकई वारदात के वक्त नाबालिग था तो फिर उस पर बालिग के तौर पर मुकदमा कैसे चलाया गया?
और मोहतरमा, वो भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। दरअसल इस केस में अवामी जज्बात बहुत बिफरे हुए थे, मुकामी MNA साहब भी इसमें इन्वॉल्व हो गए थे। पुलिस ने खुद से उसकी उम्र 15 साल की बजाय 23 साल लिख दी थी, जिसका शफीक को कुछ इल्म नहीं था।
सर, दूसरा मुलजिम हेडगार्ड तो रिहा हो गया, तो फिर शफीक को रिहा क्यों नहीं किया गया?
सब जानते हैं मुकदमे के इंदराज के मौके पर कैसे सिफारिश और रिश्वत की वजह से मुलजमान के नाम ही बदल दिए जाते हैं। हेडगार्ड को पुलिस ने भारी रिश्वत के एवज छोड़ दिया, शफीक से रकम मांगी तो उसके पास कुछ नहीं था। शफीक का जुर्म कत्ल नहीं, गुर्बत था।
उसके भाई मोहम्मद अजमत ने एक मौके पर कहा था,
मैं दुनिया से पूछता हूँ कि क्या ये बच्चा दहशतगर्द था? ये लोग मासूमों को तो दहशतगर्दों की अदालत में मौत की सजा देते हैं और असल दहशतगर्दों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते कि कहीं उनकी आंखें ना फोड़ दी जाएं।
मोहम्मद अजमत की बात में वजन है, उसके सवाल चुपते हुए हैं, उसका जवाब हम सबको तलाश करना है। अगर रियासत के पास किसी की जान लेने का इख्तियार है, तो क्या इस इख्तियार को खामियों से पुर निजाम के अहलकारों के हवाले किया जा सकता है? अपनी राय से जरूर आगाह करें। हमारा फेसबुक आईडी है facebook.com/catkahani
और जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान का ईमेल एड्रेस है info@jpp.org.pk।